बेटा अब तुम्हारा और मेरा संबंध शाश्वत हो गया। जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक मैं तुम्हारे दिल से मुक्त नहीं हो सकता। बोले गुरु जी का शरीर तो देव हो गया, गुरु जी की मूर्ति तो बदल जाती है। गुरु जी की मूर्ति जवान थी, गुरु जी की मूर्ति अब बुढ़ापे की है और गुरु जी का जो मूर्त रूप है वो तो चला जाता है। नहीं, गुरु जी जब गुरु तत्व में टिके हैं, ऐसे गुरु जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य की वृत्तियों के द्वारा शिष्य के मैं तक उनकी निगाह जाती। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु ने कहा बेटा मेरी कृपा मोक्ष का तो मूल है, लेकिन तू भी कृपा करना कि मेरा भी मोक्ष हो जाए। बोले गुरु जी आप तो मुक्त हैं। गुरु जी मैं तो बेटा चेला जी में मुक्त तो हूँ, लेकिन तूने मंत्र लेकर मेरे को अपने दिल में बांध दिया है। अब मेरा ये शरीर नहीं होगा, तभी भी गुरु की मूर्ति तो तेरे अंतःकरण में होगी और तू जल्दी से मुक्त हो जा तो तेरे अंतःकरण से मेरी मूर्ति को भी मुक्ति मिल जाए। गुरु और शिष्य बाहर के जगत में देखो तो मिलते हैं और फिर विदाई लेते हैं तो बिछड़ते हैं। फिर भी गुरु और शिष्य का बिछड़ना वास्तविक नहीं होता है, स्थूल शरीर से दिखता है। गुरु शिष्य बिछड़ नहीं सकता, चाहे माइलों की दूरी हो, हजारों लाखों माइलों की दूरी हो, अथवा लोक लोकांतरों की दूरी हो, युग युगांतर की दूरी हो, लेकिन तत्वता गुरु और सतपात्र शिष्य जब तक मुक्त नहीं होता तब तक ईश्वर कर्म और गुरु पीछा नहीं छोड़ते। ईश्वर कर्म और गुरु साथ नहीं छोड़ते। अच्छा तो गुरु कहते हैं बेटा तू जब मुक्त होगा तो मैं मुक्त होऊंगा। उसका मतलब तू जब वृत्तियों से मुक्त होगा तो फिर गुरु का काम तूने पूरा कर लिया। तो जैसे हम श्वास लेते हैं शीतल होता है, छोड़ते उष्ण होता है, तो जो छोड़ा अब दूसरा लेना तो उसके बीच में थोड़ा सा देखे व्यवहार में, काम किया और पूरा हो गया तो काम करने के पहले आराम था, काम करने के बाद आराम है। तो काम किस लिए कर रहे हैं कि हमारी वृत्तियों में राम का आराम प्रकट हो जाए, इसलिए काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरीयसी परीक्षसी तदा गंतासी निर्वेदन श्रोतस्य श्रोतव्य श्रुतस्य। जब तू मोह के दलदल को तर जाएगा, वृत्तियों के साथ जुड़े तो मोह से छूट नहीं सकते, और वृत्तियों के साथ जुड़े मोह से नहीं छूटे तो मुसीबत से नहीं छूटेंगे। वृत्तियों के साथ जुड़े रहे तो मोह से नहीं छूटेंगे। देह का मोह, संबंधों का मोह, अपने विचारों का मोह, अपने पदों का मोह, ये सब कचरा वृत्तियों में ही रहता है। मैं लोगों से तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, लेकिन न जाने मेरे को लोग परेशानी करते हैं। तुम अपने को जब तक परेशान नहीं करते हो तब तक लोग तुमको परेशानी कर ही नहीं सकते। तुम अपने को परेशान करने की जगह पे स्टैंड पे खड़े हो, क्योंकि तुम वृत्तियों में खड़े हो। वो अलग और मैं अलग, तो शरीर को मैं मानते हो, उसके शरीर को वो मानते हो, और इस शरीर को मैं मानते हो, ये मूल में तो गलती है। एक संत थे उच्च कोटि के, गुरु ने बताया कि सुख दुख में सम रहना चाहिए, और वेदांत का उपदेश साधन भजन था। उस संत ने रेलवे स्टेशन में मुसाफरी करते समय सोचा कि अभी थर्ड क्लास में जाकर बैठे, सुख दुख होता है कि नहीं जरा देखें। ऐसे तो हम हैं तो साक्षी, आत्मा है, चैतन्य है, अमर है, लेकिन फिर दुख सुख क्यों होता है। तो वो जाकर बैठे रेलवे ट्रेन थर्ड क्लास में, ऐसे तो अच्छे जाने माने साधु थे, लेकिन अनुभव करने के लिए थर्ड क्लास में भीड़ में बैठ गए कॉमन डब्बे में। पहले थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, और अभी केवल सेकंड और फर्स्ट चलता है। तो महाराज वहां भीड़ भाड़ के में तो साधु बैठा, तो लोग भीड़ भाड़ में धक्का भी दे रहे, कोई बीड़ी फूंक रहा है, कोई कैसे अनाप शनाप बोल रहा है, हे महाराज ऐसा वैसा, तो देखा कि दुख हो रहा है। गया अपने गुरु के पास के गुरु जी अभी मेरे को दुख तो होता है अपमान का, हूं तो मैं चैतन्य साक्षी अमर दुख सुख से परे हूं, लेकिन फिर भी रेलवे ट्रेन में बैठा जब अपमान हुआ, तोछड़ा व्यवहार किसी ने किया, अयुक्त व्यवहार किया, तो मेरे को दुख हुआ। गुरु ने कहा भाई तुम जब कूड़ा कचरा के ढेर पे बैठोगे तो मक्खियां वहां आएगी, कूड़ा कचरा के ढेर पे बैठोगे तो मक्खियां वहां आएगी। तुम बैठे थे कि मैं शरीर हूं और वो तुम्हारे शरीर को देखकर तुम्हारा मान अपमान किया, तो शरीर का मान अपमान उन्होंने किया, तो वो भी वृत्तियों में हल्की वृत्तियों में थे और तुम भी, मैं साधु हूं वो भी एक वृत्ति थी और साधु भी तो देह को मानकर हुए, तुम जो हो उधर तुम नहीं गए, इसलिए हार्ड मास के कचरे में तुम बैठे हो तो वहां मक्खियां बिन भी लाएगी ना। जब जब अपमान होता है तो समझो कि आप कचरे में बैठे हैं, दुख होता है, चिंता होता है, तो आप अपने घर में नहीं है, किसी म्युनिसिपैलिटी के ढेर पर बैठे हैं भाई। इस प्रकार के अगर समझ आ जाए, मेरा हस्बैंड, मेरी मिसेस, मेरा क्या होगा, तो तुम वृत्तियों के कचरे में बैठे हो, मैं रूपी परमात्मा के नजदीक नहीं बैठे हो, इसलिए सारी मुसीबतें आती। तुम माला भी करते जाते हो, वृत्तियों पर वृत्तियां चल रही जा रही, तुम मंदिर में भी जा रहे हो, वृत्तियों पर वृत्तियां भागे जा रही, तुम अच्छे काम भी करते जा रहे हो, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ राग और द्वेष की वृत्तियां भी बनी जा रही है। हकीकत में अगर अपना जल्दी कल्याण करना चाहो तो दोष और गुण, पहले तो गुणों से दोषों को निकालो और एकांत में बैठकर मैं गुणवान हूं इसको भी निकालो। दोष को निकालने से आदमी धर्मात्मा होता है और गुण और दोष दोनों को निकालने से, गुण और दोष दोनों की वृत्तियों को निकालने का अभ्यास करने से आदमी उत्तम साधु होता है और गुण दोष से अपने को पृथक जानने से वो परमात्मा हो जाता है। धन्यवाद। मन में आए जो वृत्तियों में आए वो करने लग जाए वो मानवी, उनका संयम करने की कोशिश करे वो देव है, साधक है, लेकिन वृत्तियां न उठे वो तो सिद्ध हो जाता है। केवल दो मिनट के लिए अगर ऐसी अवस्था आ जाए, अरे एक मिनट के लिए ऐसी अवस्था आ जाए तो 14 भुवनों का सुख उस पर तुमने छावर कर सकते हो, ऐसा वो अनुभव है। फिर तुमको भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु अथवा और कोई देवी देवताओं का मुलाकात अपने से दूर नहीं भासेगा, उनकी और तुम्हारे बीच की दूरी मिट जाएगी, तुम्हारी और ईश्वर की दूरी खत्म हो जाएगी। केवल एक मिनट वह अनुभव में टिक जाओगे और कहीं भी तुम जाओगे तो ये वृत्तियां चली रही तो स्वर्ग में से भी वापस, नरक में से भी वापस, दो पैर वाले में से भी वापस, तो चार पैर वाले में से भी वापस, तुम जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, कसरत पर कसरत, शीर्षासन पर शीर्षासन करते रहोगे। ये उपदेश सतपात्र सतशिष्यों को ही टिकता है और सतगुरुओं की अनुभूति वाला उपदेश है जो शिवजी की अनुभूति है। शिवजी कहते हैं वशिष्ठ को कि हे मुनीश्वर, शास्त्र नेत्रधारी इंद्र भी देव नहीं है और भगवान विष्णु भी देव नहीं है, तो ब्रह्मा जी भी देव नहीं, मैं भी रुद्र भी देव नहीं, तुम भी देव नहीं, मैं भी देव नहीं, देव तो वह है जो अनामय पद, जो अंतर्यामी, जहां से वृत्तियां उठती है और मिट जाती है, फिर भी जो नहीं मिटता, वास्तविक तुम्हारा हमारा इंद्र का और विष्णु का वास्तविक देवत्व वही देव है। सदा समचित रहना ये देव की पूजा है और तीनों गुणों का जो व्यवहार है वो उस व्यवहार की सत्यता से अपने को बचाकर उसी देव को अर्पण करना यही बिली पत्र चढ़ाना है। और ये पांच भूत से जो साधन और वस्तुएं बनी है शरीर और वस्तुएं ये सब की सब उस देव की सत्ता से वृत्तियां उत्ती और फुरफुराता है और फिर वृत्तियां मिटती तो मिटता सा लगता है ऐसा समझना ही मुझ शिव को पंचामृत से स्नान कराना है। और व्यवहार काल में भी बार बार उस देव से जो वृत्तियां होती उस देव में रहना वो ही मेरे आगे धूप और दीप करना है। इस प्रकार की तुम्हारे जैसे बुद्धिमान ऋषिश्वरों के लिए इस प्रकार की पूजा है, बाकी साधारण लोगों के लिए फिर बाहर के बिली पत्र पंचामृत और ये व्यवस्था की है। जो 10 कोस नहीं चल सकते हैं उनके लिए एक फलांग चलना भी अच्छा है। ऐसे जो एकदम सूक्ष्म उस देव की उपासना नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये देव की भावना की गई है। तो इस देव अंतर्यामी देव की अगर उपासना की जाए तो महाराज जैसे बैलगाड़ी वाला 50 वर्ष बैलगाड़ी लेकर यात्रा करता रहे फिर भी वो दरिया पार की खबर नहीं ला सकता है और हवाई जहाज वाला 8-10 घंटे में दरिया पार के गांव टापू पे जाकर आ सकता है, दुबई जाके आ सकता है, लंदन जाके 10 घंटे में 12-15 घंटे में आ सकता है हवाई जहाज वाला। ऐसे ही उस ये हवाई जहाज जैसी उपासना में वो परमात्मा का अनुभव करके फिर उसकी वृत्ति बाहर आएगी लेकिन वृत्ति में सत्यता नहीं रहेगी, वृत्ति बाधित हो जाएगी। बाधित कैसे कि जैसे रस्सी है ना उसको जला दिया तो उसमें बल तो दिखेंगे लेकिन वो बांधने वाली नहीं होगी। मूंगफली है उसको सिंगदाना बना दिया वो खाने और देखने के काम आएगी लेकिन दूसरी नई मूंगफली पैदा नहीं करेगी। ऐसे तुम्हारी वृत्ति नए जन्मों को पैदा नहीं करेगी। इस जन्म में जो लेना देना खाना पीना है वो काम हो गया, सेकेली सिंह और कच्ची सिंह में जो फर्क है। ऐसे ही ज्ञान से तुमने वृत्तियों के आधार को जान लिया एक बार तो सारी वृत्तियां तुम्हारी भुन जाएगी, भुन जाएगी। तो जैसे कबीर है लोही के साथ रहते हैं, रहते तो रहते हैं लेकिन जैसे साधारण आदमी रहते हैं ऐसी कबीर की वृत्ति लोही के प्रति कामासक्त नहीं हो सकती। और लोही अगर बुद्धिमान है समझदार है तो कबीर को जैसे साधारण पत्नियां पति को अपने शरीर में फंसाती है और पति अपनी पत्नियों को शरीर में फंसाते ऐसा वो कपल नहीं था कबीर और मिसिस कबीर का। एक बार कबीर के घर कुछ अनजान लोग आए, माता लोही से पूछा कि हमें संत दर्शन करना है, कबीर जी का दर्शन करना है। उन्होंने कहा कि वो अभी शमशान में गए हैं किसी अर्थी के साथ और पैदल जाना होता अभी भी और बहुत समय लगेगा, आप दूसरे समय आना, उन्होंने हमें आज ही दर्शन करना और जल्दी जाना है। आप बताओ कि शमशान में कबीर जी को हम कैसे पहचाने, बहुत लोग होंगे वहां। तो लोही ने कह दिया कि उनको अगर पहचानना तो एक ही काम करो तुम कि हर समय जिसका चेहरा एक जैसा रहता हो वो आपके संत है और दूसरे असंत है। अच्छा, तो जो मुर्दे के साथ जा रहे हैं उस समय चेहरा एक प्रकार का, जला रहे हैं तो जिनकी ममता आती थी उनके चेहरे में बदला आती थी और जब जला कर निकले तो खाने पीने की इधर उधर की वृत्तियां बने। लेकिन कबीर की वृत्तियां वो वृत्तियों को देख रहा है तो वृत्तियों को देख रहा है तो वृत्तियों का प्रभाव चेहरे पर नहीं पड़ रहा है, समचित शांत। ऐसे कबीर को एक बार गोरखनाथ ने पकड़ा रास्ते में, ये महाराज तुम और इतने पूजे जाते हो, हम फक्कड़ साधु त्यागी जति जोगी और हमारे कोई छिकनी नहीं रहता है, संत कबीर महापुरुष भगवान प्रभु, चलो जरा हो जाए दाव दिखाओ सिद्धाई। कबीर के हाथ में धागा था, धागे की वो ढेरी होती, बोले महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो ताना बुनी करते बस और कुछ नहीं। नहीं गोरख में अपने कहा नहीं महाराज आप कुछ बताए, ऐसा करके गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल भोंक दिया जमीन में और योग बल से त्रिशूल पे बैठ गया ऊंचा आसन बनाकर। कबीर को बोलता है हाँ करो शास्त्रार्थ। कबीर ने कहा मेरे पास तो आसन नहीं है। बोले महाराज दिखाओ। कबीर ने क्या करा अपनी ढेरी का एक छेड़ा धरती पर ढेरी को ऊपर फेंका। ढेरी खुलती खुलती धागे का एक छेड़ा धरती पर दूसरा छेड़ा आकाश में खड़ा है। कबीर जाके वहां खड़े बोले महाराज आओ त्रिशूल को ऊपर करो। गोरखनाथ ने कहा चलो छोड़ो दूसरा खेल खेलते हैं। गंगा जी में स्नान करने चलते हैं और मैं गोता मारूंगा रूप बदल दूंगा कुछ भी करूंगा आप मेरे को खोजेंगे। संता कुकड़ी लिखत छिपरांध कयूं और मैं जल में जाऊंगा और आप खोजेंगे। आप जल में जाएंगे मैं खोजूंगा। मारा गोता मेंढक बन गए। कबीर जी ने देखा कि मेंढकों के बीच में ज्यादा हिलचाल जो कर रहा है ने मेरे पास एक जेब कतरा आया। बोले सत्संग सुन के मैंने ये धंधा बंद कर दिया। अब मेरे को रिक्शा विक्षा मिल जाए ऐसा आप आशीर्वाद करो। मैंने कहा जरूर मिल जाएगी लेकिन ये बता तुम जेब काटते तो पता कैसे चलता कि मिलकत उसके पास है जेब में। बोले बार बार यहाँ हाथ जाता है उनका हम समझ जाते हैं यहाँ माल है। तो नया आदमी ऐसे हवाई जहाज के तो अंदर जो ऑफिसर आदि को है तो मेरे को क्या फिर तो बात बात में उसने ये बताया। मैंने कहा तो बोली ये सब नए लोग हैं। मैंने कहा तुम अंतर्यामी तो नहीं हो। बोले नहीं बाबा जी जो पहली बार हवाई जहाज में आते ना वो खिड़की खोलते ये देखेंगे वो देखेंगे वो देखेंगे वो तो पट्टा भरने का देखेंगे हम समझ जाते कि नए ग्राहक है फर्स्ट टाइम आए। तो जो मेंढकों के बीच नया मेंढक था उथल पाथल फतफत किया तो कबीर जी ने तो आइडिया से ही पकड़ लिया। उठाए हाथ पे उठी जाग जोगियड़ा रांदे कयूं आओ लिक छिप रांदे कयूं आओ जल में जोगियड़ा रांदे कयूं तू भी लिकंदे मां भी लिकंदुस तू भी गोलींदे मां भी गोलींदुस गोरख जल में डेडर थी वेणो कबीर तंहिंखे हथ में खयणो उथी जाग जोगीअड़ा रांदे कयूं आओ लिक छिप रांदे कयूं रांदे कयूं हण रांदे कयूं। गोरख क्या करे पकड़े गए खड़े हो गए। बोले अच्छा कबीर जी आप मारिए गोता मैं आपको खोजूंगा। कबीर जल में जल थी वेणो पतो गोरख के कौन को पैणो। कबीर जल में जल हो गया अब गोरख कहां खोजेगा। इधर से इधर उधर से उधर से उधर आखिर देखा कि संध्या हो रही है माई लोई कहीं श्राप न दे दे हम गए थे भाई खेलने को ऐसा हो गया ये अब आगे जल में तुम्हारे पति खो गए ऐसा करके तुम्बा भर गया है। माता जी कबीर जी तो जल में खो गए खेल खेल में खेल समाप्त हो गया। लोई हंस पड़ी बोले हो नहीं सकता मेरा पातिव्रता धर्म होते हुए मेरा स्वाग टूटे हो नहीं सकता। वृत्तियों को देखने वाली रही होगी हो सकता है ऐसी ऊंचाई रही होगी उस महिला की पति इतने समर्थ और पति अनुकूल पत्नी। बोले अच्छा तो फिर बोले माता जी ये लाए उन जल बोले इसकी धार कीजिए। गोरखनाथ ने वो जल की धार की कथा कहती है कि कभी उसमें खड़े हो गए। जब सोबरी 50 महल बना सकते हैं तो कभी ऐसा भी कर सकते हैं। कृष्ण 16108 रूप बना सकते हैं। अरे भाई आप रात्रि को गंगा जी बनाते कि नहीं बनाते बोलो। सपने में गंगा जी बनाते उसमें मेंढक भी बनाते हैं मछलियां भी बनाते हैं तैरने वाले भी बनाते हैं और कभी कभी डूब के बहने वाले भी बनाते हो ना सपने में। जब तुम्हारा रात्रि का जरा सा स्वप्न इतना कुछ बना सकता है तो जहां से वृत्तियां उठती और लीन होती है उसमें जो गहरे टिक गए उनके संकल्प से कभी कुछ बन गया उसको लोग योग सिद्धि कहते हैं अथवा जिनकी गति नहीं वो लोग उम्बक बात मानते हैं। लेकिन मैं तुमको ये नहीं कहना चाहता कि तुम कबीर की नाई योग सिद्धि करो अथवा गोरखनाथ की नाई उस पर बैठने का अभ्यास करो। मैं तो केवल ये चाहता हूं कि गोरखनाथ की सिद्धाई और कबीर की सिद्धाई अथवा दूसरे महापुरुषों की सिद्धाई का मूल कारण जो है वो अभी इस समय तुम्हारे अंतरतम चैतन्य स्वरूप परमात्मा में वृत्तियों को देखकर थोड़ा सा अपने को बस सावधान चैतन्य में आते जाओ बस। और जितना जितना सत शिष्य सतगुरु के प्रति अहो भाव आदर भाव करता है उतना उतना सतगुरु का संप्रेक्षण सहयोग शिष्य को मिलता है और सफल होता जाता है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना चौरासी में आना जाना यम का बने मेहमान सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं हो रहना। तो गुरु का मतलब अचल अथवा तो बड़ा गुरु शिखर बड़ा शिखर है जो छोटी छोटी बात में पत्ता तिनखा बह जाता है बाहर नहीं बहता। छोटे मोटे पानी के बहाव में कंकड़ पत्थर बह जाते लेकिन वो बड़ा शिखर पहाड़ वो थोड़े बह जाता दरिया में। ऐसे ही छोटी मोटी वृत्तियों में जो लोग बह जाते हैं वो साधारण होते हैं। तमाम वृत्तियां दुखाकार सुखाकार पैदा हुई फिर भी जो अटल खड़ा है उसी को गुरु बोलते हैं और उसके चिंतन से हमारे में भी गुरुत्व प्रकट होने लगता है। सुख में सुखी दुख में दुखी वो बिल्कुल फोर्थ क्लास चित्त है लोहे जैसा वैल्यू उसकी। सुख में सुखी दुख में भी सुखी वो सोने जैसा है। सुख दुख में सम रहे वो हीरे जैसा है और सुख दुख जहां से उठते वो उसी में ठहरा रहा है। सुख दुख का जिस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता वो सम्राट है। सम्राट के अंतर्गत लोहा सोना हीरे सब हो जाते हैं। ऐसे सम्राटों का सम्राट पद है जहां सुख और दुख में समता है वो तो ठीक है लेकिन सुख दुख जहां असर ही नहीं कर सकते। सुख दुख वृत्तियों में होता है काम भी वृत्ति में आता है क्रोध भी वृत्ति में आता है और हम लोग जुड़ जाते हैं सहयोग देते तो पटके जाते हैं। मैंने बिल्कुल अपने इन आंखों से और इन्हीं कानों से ये दृश्य देखा सुना है कि पाटन में गुरु जी का कार्यक्रम था और मैं उनकी सेवा में जैसे किताबें पढ़ते हैं ऐसे में किताब पढ़ता था थोड़ा बहुत गुरु जी सत्संग करते। फिर जब विदा हुई तो गुरु जी के साथ पाटन से हम मैसाणा पहुंच रहे थे। वहां शटल चलता है तो फर्स्ट क्लास में तीन चार टिकटें ली थी उसने भक्त ने डॉक्टर शोभ सिंह अभी भी है उसका शरीर तो वो जरा शौकीन है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का अखबार पढ़ा। बोला कि बापू अभी तो चंद्रलोक तक लोग पहुंच गए वहां से मिट्टी भी ले आए हैं और वहां होटल बनेगी और धनाढ्य आदमी चंद्रलोक तक जा सकेंगे। बापू जी इन्होंने बड़ा आविष्कार किया। बापू जी एक क्षण वृत्तियां जहां से उठती और लीन हो जाती उसमें टिके। बापू जी ने कहा कि कुछ भी नहीं थक जाएंगे लाखों करोड़ों डॉलर खर्च के थक जाएंगे कुछ मिलेगा ही नहीं। चंद्रलोक पे होटल बनाएंगे होंगे अरे रॉकेट छोड़ना ही भूल जाएंगे चंद्रलोक जाना ही भूल जाएंगे। जो बाबा जी ने चालू ट्रेन में एक क्षण में बताया उस बात को समझने के लिए करोड़ों अरबों रुपया अमेरिका को और दूसरे देशों को खर्च करना पड़ा। मेरे को लगा कि अगर ऐसे देश इन महापुरुषों का फायदा उठाते तो कितनी जान हानि न बचती जान माल धन दौलत बचता। ये मैं व्यासपीठ पर बोल रहा हूँ और आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कैसे भरी जा रही बिल्कुल अक्षरश से ही बात में सत्य बोल रहा हूँ कि उसने वो सब दिखाया रॉकेट के चित्र और कई दिनों से पढ़ता है और अभी वो आदमी है पाठन। उस समय मेरे को लगता बापू बोलते कि भैया कुछ नहीं मिलेगा थक जाएंगे कुछ है नहीं ये तो होटल करेंगे और मिट्टी ले आए ये ले आए करने दो धमाधम करने दो आखिर थक जाएंगे। तो आज हम देख रहे कभी आती है कि चंद्रलोक पर अभी ये कर रहे हैं वहां नींव खुद रही है होटल बनने की कुछ तैयारी हो रही कभी सुना अभी कई वर्ष हो गए इस बात और जब से चला था वो बात जरा सी कि चंद्रलोक पर रॉकेट गया है, वहां की मिट्टी मिली है, ये संभावना है, वहां मनुष्य जीवन जिन संभावनाएं हैं, ऐसी रोज रोज अखबार में लोगों ने क्या क्या आता था। तो जो खोजने में रॉकेटों में समयों में विज्ञानियों ने आहुतियां दी, समय की देश ने डॉलरों की आहुतियां दी, उस बात को समझने के लिए, उसका परिणाम खोजने के लिए लीलाशाह बापू को चालू ट्रेन में आधी सेकंड भी नहीं लगी। बराबर कुछ को नहीं, यही मोटिव ना थकी जी, कुछ को नहीं, कुछ नहीं है, खाली फालतू। ये इसलिए बात बता रहा हूं कि आप अपनी वृत्तियों का अनुसंधान करें, बहुत बहुत मिलता है, और ऐसा मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा मिलता है कि कुछ भी नहीं मिला, ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि पहले ही था, केवल लापरवाही थी, पता था। वो ऐसा स्वरूप है, वो ऐसा परमात्मा है, जब तक खोजा नहीं तब तक खोजते समय बोलते ही रास्ते में बहुत सारा मिलता है, जब वो स्वयं मिलता है तो पता चलता कि कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो मिला मिलाया था, बेवकूफी से हम दूर भागे जा रहे थे। वो मिला मिलाया था, थाप्या न जाई किता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। ईश्वर की स्थापना तुम नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते हो, मूर्ति को मंदिर को मस्जिद को बना सकते हो, लेकिन वास्तविक परमेश्वर को तुम बना नहीं सकते हो। अगर परमेश्वर को तुम बना सकते हो तो तुम्हारा मैन मेड भगवान कैसा होगा? नहीं, आप अपनी भावना से भगवान की मूर्ति बना सकते हो, लेकिन भावना जहां से उठती हो, वृत्ति वृत्ति जहां से उठती है, उसको तुम थोड़े बना सकते हो। उसी से सारे ब्रह्मांड बन बन के बिखर जाते हैं, उसी तन्य से तुम्हारे स्वप्न के बंद पैन हो जाते हैं, लेकिन तुम वृत्तियों में खेलते हो तो स्वप्न जगत सच्चा सुन लगता है, फिर जागृत की वृत्ति उठती है तो स्वप्न की वृत्ति खत्म हो जाती है, और जागृत में मैं फलाना हूं ये भ्रांति उठती है, लेकिन मैं क्या हूं वहां अभी तक नहीं पहुंचे। एक बार कबीर ने अपने प्यारे मित्रों से, प्यारे शिष्यों से बड़ी मजाक की, लोग आए सुबह सत्संग के लिए और कबीर जी छाती पीट कर रोने लगे, गुरु जी रोने लगे। अब कल्पना करो, आप आए कथा में और मैं सत्संग करते करते रोने लगू तो कैसा लगेगा? रोने लगे, चुप करने महाराज क्या हुआ? बोले मेरा तो सब चला। बाबा जी कह दो आपको किसने सताया? बोले क्या सताया, बस आप नकली रो तो असली से बढ़िया रहो। आखिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने चुप कराए, बोले आप क्या बात। बोले मेरे को रात को मैं चिड़िया बन गया था, तुमको क्या बताऊं कि चिड़िया बन गए थे सपने में, इसमें रोने की क्या बात है गुरु? बोले क्यों मैं रोऊं, मेरे को अब पता नहीं कि मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं। बोले नहीं आप कबीर हैं, चिड़िया नहीं। बोले ये तुम कैसे कहते हो, चिड़िया के समय तो मैं अपने को चिड़िया ही मानता था और उस समय कबीर नहीं था, अभी तो कबीर है और चिड़िया की स्मृति है, चिड़िया को तो कबीर की स्मृति नहीं थी। अगर स्मृति से मैं ये हूँ इस मान्यता से तुम बोलते हो तो चिड़िया सच्ची, कबीर कच्चे, चिड़िया पक्की। चिड़िया की स्मृति जागृत में रहती है लेकिन कबीर की स्मृति सपने में नहीं रही, मैं तो चिड़िया बन गया। बोले नहीं महाराज आप चिड़िया नहीं, आप तो कबीर जी हैं। बोले कैसे बोलते हो? बोले हम देख रहे हैं आप कबीर हैं, तुम देख रहे हो मैं कबीर हूँ, ये कैसे देख रहे हो? तुम जब सो जाओ और तुम देखोगे चिड़िया है तो तुम कबीर कैसे बोलोगे? तो देखने ही अगर सहारा है सच्चा है तो वृत्तियों में तो न जाने क्या क्या दिखता है। रात को तुम कभी अपने कुछ देख लेते हो, राजा देख लेते तो राजा नहीं होते। तो अब मैं कबीर हूं कि चिड़िया हूं मेरे को पता नहीं। बोले नहीं महाराज आप कबीर है। बोले कैसे कबीर? मैं कबीर हूं ये भी तो वृत्ति है, और मैं चिड़िया हूं ये भी तो वृत्ति है, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, कोई बताए। सियाने शिष्य समझ गए कि गुरुदेव रो धो के भी हमें जगाना चाहते हैं, चिड़िया का सपना देखकर भी हमारा सपना तोड़ना चाहते हैं। कितने दयालु होते होंगे, कितने करुणामय होते होंगे और कितने जगे हुए होंगे। जब वृत्तियों के पार चला गए ना तो आदमी इतना स्वस्वरूप में टिक जाता है। कबीर कह सकते हैं, आप अभी नहीं कहना, कबीर कह सकते हैं भला होया हरि बिसरियो, सिर से तली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं उर से जपूं न राम राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। ये ऐसी अवस्था आ जाएगी, वृत्तियों को देखोगे ना तो ऐसी अवस्था आ जाएगी, फिर भगवान को बजना नहीं पड़ेगा, न मन से न उर से न कर से भगवान तुम्हारा भजन करेगा। और सच्ची बात यह है कि भगवान और तुम दो रहोगे भी नहीं, तुम्हारी और भगवान की दूरी दूर हो जाएगी। अगर दूरी रखना चाहते हो तो जैसी वृत्तियां हो ऐसा खाओ पियो करते रहो कसरत, अगर दूरी दूर करना चाहते हो तो एकांत में बैठो, कुछ भी न करो, अपने गुण को भी नहीं देखो, दोष को भी नहीं देखो, दूसरे के गुण और दोष को भी न देखो,